بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا، زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام سویکار کریں۔ آج کے کاریکرم کا شبھ آرمبھ پوتر قرآن کے سورہ انفال کی دوسری، تیسری اور چوتھی آیتوں کی تلاوت اور انواد سے کر رہے ہیں۔ قاری ہیں شری ہوشنگ محمد یون۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم۔ لهم مغفرة ورزق كريم، صدق الله العلي العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ ایمان والے تو وہی ہیں کہ جب اللہ کو یاد کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھیں، اور جب ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھی جائیں تو وہ ان کے ایمان کو اور بڑھا دیں، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے جو کچھ انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ ہیں جو سچے ایمان والے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجے ہیں، क्षमा और सम्मानित आजीविका है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज गुरुवार है, जनवरी की 30, जमादी सानी की 16 और बहमन की 11 तारीख। कार्यक्रमों की रूपरेखा आप नोट कर सकते हैं। कार्यक्रम का आरंभ हम विश्व समाचारों से करेंगे। विश्व समाचारों के बाद राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम पेश किया जाएगा। राजनीतिक चर्चा के उपरांत साप्ताहिक कार्यक्रम आप सुनेंगे आज की बात, और सभा के अंत में हम आपको एक अन्य साप्ताहिक कार्यक्रम सुनवाएंगे, टिकाऊ आर्थिक विकास। तो ये थी दोस्तों हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा। हमारे इन कार्यक्रमों को आप वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, partstoday.com/hi। कार्यक्रमों पर आप अपनी प्रतिक्रियाएं भी हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindi@ws.irib.ir। अब कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से विश्व समाचार पेश किए जाएंगे। ये तेहरान है। अब आप मरियम मेहरदादी और कायम रिजवी से विश्व समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। राष्ट्रपति रूहानी ने कहा कि ईरान थोपे गए एक आर्थिक युद्ध का सामना कर रहा है। ईरान ने कहा है कि अगर प्रतिबंध नहीं हटाए गए तो वो पूरक प्रोटोकॉल से निकल जाएगा। ईरान ने कहा है कि अगर इसराइल ने मूर्खता की तो हैफा व तेल अवीव को मिट्टी के ढेर में बदल देंगे। अमेरिका के नए विदेश मंत्री ने कहा है कि यमन त्रासदी का जिम्मेदार अमेरिका है। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए।
राष्ट्रपति रूहानी का कहना है कि ईरानी राष्ट्र पर डाले जा रहे दबाव की इतिहास में मिसाल नहीं मिलती। राष्ट्रपति डॉक्टर हसन रूहानी ने कहा है कि हम ईरान के खिलाफ थोपे गए आर्थिक युद्ध का डट कर मुकाबला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के लिए संघर्ष करने के कारण हमें ईरानी राष्ट्र के प्रति आभार प्रकट करना चाहिए। हसन रूहानी ने गुरुवार को कृषि मंत्रालय की कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि बरसों, विशेषकर गत 3 वर्षों से जारी बेहद असाधारण आर्थिक युद्ध में संयम के साथ डटे रहने के लिए ईरानी जनता के प्रति आभार प्रकट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हालिया सदियों में शायद ही किसी देश की जनता पर इस प्रकार से दबाव डाला गया हो।
ईरान की इस्लामिक क्रांति के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामनेई के कार्यालय के प्रमुख हुज्जतुल इस्लाम मोहम्मदी गुलपैगानी ने गुरुवार को एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि सुप्रीम लीडर ने जो भविष्यवाणी की थी वो सही निकली। उन्होंने साफ कहा था कि हम वार्ता नहीं करेंगे और जंग भी होने वाली नहीं है। कुछ लोग इस प्रकार की बातें कर रहे थे कि ईरान पर जंग का खतरा मंडरा रहा है, इसलिए ईरान को चाहिए कि अमेरिका से वार्ता कर ले। हुज्जतुल इस्लाम मोहम्मदी गुलपैगानी ने कहा कि आज हम देख रहे हैं कि अमेरिकी अधिकारी ईरान से वार्ता के लिए आग्रह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपराधी ट्रंप हमारे महान कमांडर जनरल सुलेमानी का कातिल था। ईश्वर की करनी कुछ ऐसी रही कि शहीद सुलेमानी की हत्या की बरसी के अवसर पर ट्रंप का विनाश हुआ।
ईरान की संसद में राष्ट्रीय सुरक्षा व विदेश नीति आयोग के प्रमुख ने पूरक प्रोटोकॉल से देश के निकलने की डेडलाइन का ऐलान किया है। مشتبہ زنوری نے کہا ہے کہ اسلامی گڑتنتر ایران 23 فروری کو پورک پروٹوکول کو چھوڑ دے گا جسے اس نے وشواس بحالی کے لیے اپنی مرضی سے اپنایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس قانون کے مطابق دیش کی پرمانو ارجا سنستھا کو آدھونک سینٹریفیوج بنانے و لگانے کی کاروائی شروع کرنی تھی جسے اس نے پوری طرح لاگو کیا ہے۔ مشتبہ زنوری نے بدھوار کی شام العالم سے بات چیت میں پابندیوں کے ختم ہونے و راشٹری ہتوں کی رکشا سے وشیش اسٹریٹجک رنیتک قانون کے بارے میں کہا کہ اس قانون کا ایک وقت ہے جس کے مطابق 23 فروری کو پورک پروٹوکول سے ایران نکل جائے گا۔
اسلامی گنتنتر ایران کی سشستر سینا کے پروکتا کا کہنا ہے کہ اگر اسرائیل نے ایران کے ورودھ چھوٹی سی بھی مرکتہ کی تو ہم ان میزائل چھاونیوں کو بھی تباہ کر دیں گے جن کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایران پر حملے کے لیے تیار کی گئی ہے، اور بہت ہی کم سمے میں حیفا اور تیل آویو کو مٹی کے ڈھیر میں بدل دیں گے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے انوسار آئی آر جی سی کے کمانڈر جنرل ابوالفضل شکارچی نے اسرائیلی سینا کے آرمی چیف کی حالیہ دھمکیوں کو منوویگینک یدھ قرار دیا اور کہا کہ وہ ابھی تک ایران کی سشستر سینا کی طاقت اور کشمتا کو سمجھ نہیں سکے ہیں۔
قطر کا کہنا ہے کہ پرتبندھوں کے دوران ایران نے جس پرکار سے ہمارا ساتھ دیا ہے اسے ہم کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ قطر کے ودیش منترالیہ کے پروکتا نے کہا کہ ویسے تو ترکی اور ایران کے ساتھ ہمارے سمبندھ بہت اچھے اور مدھر ہیں، کنتو پرتبندھوں کے دوران ایران نے جس طرح سے ہمارا ساتھ دیا ہے وہ پرشنسنیہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اسلامی گڑتنتر کے آبھاری ہیں کہ اس نے پرتبندھوں کے دوران ہمارا ہر پرکار سے ساتھ دیا۔ اس سے پہلے قطر کے ودیش منتری محمد بن عبد الرحمن آل ثانی بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ ایران شیتر کا ہی ایک بھاگ ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہمارا پڑوسی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ ہماری سنیکت سیمائیں ہیں۔
ایران کے کیندریہ بینک کے گورنر نے عمان کے ادھیکاریوں سے بھینٹ میں ایران اور عمان کے ویاپارک سمبندوں کو مضبوط بنانے پر بل دیا ہے۔ عمان کی راجدھانی مسقط کی یاترا پر پہنچے ایران کے کیندریہ بینک کے گورنر عبد الناصر ہمتی نے کہا ہے کہ ایران اور عمان کے بیچ وبھن کھیتروں وشیش کر وتیہ بینکنگ اور ویاپار کے کھیتر میں سہیوگ بڑھایا جائے گا۔ انہوں نے اپنی یاترا کا ادیش دونوں دیشوں کے آرتھک بینکنگ اور ویاپارک سمبندوں میں پنروچار بتایا۔
روس نے کہا ہے کہ پرمانو سمجھوتے میں امریکہ کی واپسی بنا شرط ہونی چاہیے۔ روس کے ودیش منترالیہ نے ایک بیان میں بل دیا ہے کہ جے سی پی او اے میں امریکہ کی واپسی اس انتراشٹری سمجھوتے کے سوروپ میں بنا کسی بدلاؤ کے ہونی چاہیے۔ روس کے ودیش منترالیہ نے ایران کے پرمانو کارکرم پر انتراشٹری پرمانو ارجا ایجنسی کی سٹیک نگرانی کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سمجھوتے میں امریکہ کی واپسی اس طرح ہو کہ تہران پر الگ سے پرتبدھتائیں نہ تھوپی جائیں اور نہ ہی اس سمجھوتے میں کسی طرح کا بدلاؤ کیا جا سکے۔
امریکہ کے نئے ودیش منتری اینٹنی بلنکن نے یمن میں سب سے بری مانو تراسدی کے لیے سعودی حملوں کو ذمہ دار بتایا ہے۔ اینٹنی بلنکن نے ودیش منتری بننے کے بعد پہلی پریس کانفرنس میں کہا کہ راشٹرپتی بائیڈن وائٹ ہاؤس میں پاردرشتا واپس لانا چاہتے ہیں۔ بلنکن نے یمن کے مدعے کا ذکر کرتے ہوئے اس دیش کے خلاف قریب 6 سال سے سعودی عرب اور اس کے گٹھ بندھن کے اپرادھ کی اور اشارہ نہیں کیا، صرف یہ کہا کہ سعودی عرب کی اگوائی والا سینیہ گٹھ بندھن دنیا کے سب سے برے مانوی سنکٹ کو جنم دینے میں ذمہ دار ہے۔ انہوں نے اس کے ساتھ ہی دعویٰ کیا کہ صنعاء میں حوثیوں نے بڑے پیمانے پر دشمنی بھری کارروائی کی اور مانواधिकार کا الگھن کیا ہے۔ امریکی ودیش منتری نے کہا کہ حوثیوں کے یمن کے قریب 80% علاقوں پر نیانترن ہے اور ہمیں اس اور سے سنتوش حاصل کرنا ہوگا کہ انصار اللہ کو آتنکوادی قرار دینے سہت ہمارا کوئی بھی قدم یمن میں مانوی مدد کے پہنچنے میں رکاوٹ کی وجہ نہ بنے۔
امریکہ میں چرمپنتھی گٹوں کے حملے کا خطرہ باقی ہے۔ راشٹریہ گارڈ کو واشنگٹن میں 31 مارچ تک تعینات رہنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ امریکہ کے آنترک سرکشا وبھاگ نے سچیت کیا ہے کہ دیش میں راشٹرپتی کے بدلنے کا ورودھ کرنے والے گٹوں کی اور سے ہنسک و بھڑکاؤ کارروائی کا خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے۔ रॉयटर्स के अनुसार अमरीका के इस विभाग ने बुधवार की शाम राष्ट्रीय आतंकवाद अनुशंसा नामक बयान में सचेत किया है कि राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की हार से क्रोधित समर्थकों के हिंसक व्यवहार का खतरा अभी भी बाकी है। यह ऐसी हालत में है कि अमरीका में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के बाद भी आपात स्थिति खत्म नहीं हुई है।
इराक के भूतपूर्व प्रधानमंत्री का कहना है कि स्वयंसेवी बल हष्टोशावी इराक की भूमि को आज़ाद कराते रहेंगे। नूरी मालिकी ने बुधवार को बगदाद में हष्टोशावी के शहीदों की याद में आयोजित किए गए कार्यक्रम में कहा कि इराक ने उस आतंकवाद को पराजित करने की क्षमता सिद्ध कर दी है जिसे इराक के भीतर क्षेत्र और विश्व हर ओर से समर्थन हासिल है। नूरी मालिकी ने कहा कि हालांकि देश की कोई भी शक्ति इन आतंकवादियों के टक्कर लेने की क्षमता नहीं रखती, किंतु इराकियों ने यह सिद्ध कर दिया कि उनके जयाले आतंकवाद और आतंकवादियों को परास्त कर सकते हैं, चाहे उनके पीछे बड़ी शक्तियों का ही हाथ क्यों न हो। याद रहे कि पिछले शनिवार को सलाहुद्दीन प्रांत में दाइश के आतंकवादियों और हष्टोशावी के बीच झड़पों में इस स्वयंसेवी संगठन के 11 सदस्य शहीद हो गए जबकि 10 अन्य घायल हो गए। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से अंतर्राष्ट्रीय समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
श्रोतो, राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए। इराकी जब ईरान का नाम सुनते हैं तो उन सबको इराक की सुरक्षा को सुनिश्चित बनाने में ईरान की महत्वपूर्ण और रचनात्मक भूमिका की याद आ जाती है। आतंकवादी गुट दाइश को 102 सरकारों व देशों का समर्थन प्राप्त था और उनमें सर्वोपरि अमेरिका था। सार्वजनिक और निजी संपत्तियों में आग लगाने और राजनीतिक नारों का व्यवहारिक बनाने और आर्थिक मांगों को पूरा करने के बजाय लेबनान के कुछ क्षेत्र में होने वाली अशांतियों के पीछे अमेरिका की भूमिका को देखा जा सकता है। 26 जनवरी की घटना के बाद जहां किसानों का आंदोलन कमजोर पड़ता जा रहा है, वहीं इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। 37 किसान नेताओं पर शर्तें तोड़ने का आरोप है, जबकि कुछ नेताओं ने स्वयं को किसान आंदोलन से अलग करने की घोषणा की है। श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं कि आतंकवादी गुट दाइश से मुकाबले में ईरान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, चाहे वो इराक हो, सीरिया हो या लेबनान आदि। इराकी जब भी ईरान का नाम सुनते हैं तो उन सबको इराक की सुरक्षा को सुनिश्चित बनाने में ईरान की महत्वपूर्ण भूमिका की याद आ जाती है। आतंकवादी गुट दाइश को 102 सरकारों व देशों का व्यापक समर्थन प्राप्त था और उनमें सर्वोपरि अमेरिका था। रोचक बात यह है कि आतंकवादी गुटों को उन देशों व सरकारों का व्यापक समर्थन प्राप्त था और है जो आतंकवाद से मुकाबले का दम भरती हैं। साथ ही मोहम्मद अली कौमी,
इराकी जब ईरान का नाम सुनते हैं तो उन सबको इराक की सुरक्षा को सुनिश्चित बनाने में ईरान का योगदान याद आ जाता है। आतंकवादी गुट दाइश को 102 सरकारों व देशों का समर्थन प्राप्त था और उनमें सर्वोपरि अमरीका था। अगर इराकी सेना स्वयंसेवी सेना के जवानों की कुर्बानियां और ईरान की सहायता न होती तो आज इराक पर दाइश का कब्जा होता और हम अपने इतिहास में इस बात को दर्ज करेंगे कि आतंकवादी गुटों से मुकाबले में इराक का पहला समर्थक देश ईरान था।
ان اول من مد يد العون للعراق هو الجمهوريه الاسلاميه في ایران.
میں بغداد کے پروتر میں گیا. یہ وہ جگہ ہے جو ورشوں تک القاعدہ اور اس کے بعد داعش کے آتنکوادیوں کا گڑھ تھی.
تنظیم داعش الارهابی وصل مسافه تقریبا 500 متر.
آتنکوادی گٹ داعش اس شیتر سے 500 میٹر کی دوری تک پہنچ گیا تھا. اگر وہ ہمارے شیتر میں پہنچ جاتا تو نردوشوں کی ہتیا کر کے ہردے ودارک تراسدی اتپن کر دیتا. پرنتو ایشور کی کرپا سے عراق کی سشست سینا اور ایرانی پرامرش داتاؤں کی سہایتا سے داعش بھاگنے پر مجبور ہو گیا. یہ دیالا پرانت کا سنی باہل شیتر ہے. ایک سمے تھا جب یہ شیتر کھجوروں کے پیڑوں و باغوں کے لیے مشہور تھا. کنتو آتنکوادیوں نے جو جھوٹ میں سنی مسلمانوں کے سمرتھن کا دعویٰ کرتے تھے نہ کیول دیالا کے کھجوروں کے باغوں کا صفایا کر دیا بلکہ ان سنی مسلمانوں کا گھر بھی تباہ کر دیا جو اس کے ساتھ سہکاریتا نہیں کرتے تھے, جیسے محمد دہلگی کا گھر. پورے گھر میں بم لگا کر اڑا دیا. آتنکوادیوں نے ہم سے سہکاریتا کرنے کے لیے کہا, کنتو رات کا فائدہ اٹھا کر ہم بھاگ گئے تاکہ ان کے ساتھ سہکاریتا نہ کرنا پڑے. کنتو انت میں انہوں نے ہمارے گھروں کو دھوست کر دیا. اب داعش کی پراجے کے 4 برس بعد عراقی دونوں راشٹروں یعنی عراق اور ایران کے بیچ ایکتا و بھائی چارے کی مضبوطی پر بل دے رہے ہیں. یہ وہ بندھتو ہے جسے داعش, باسی اور امریکی نہیں ختم کر سکے. بغداد سے آئی آر آئی بی کے لیے جلال خالدی کی رپورٹ.
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے. اور آپ سن رہے ہیں کاریکرم راجنیتک چرچا. سماچاروں سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے گھٹناؤں کی تہ تک پہنچنے اور وبھن آیاموں کو چھونے کی کوشش. کارکرم راجنیتک چرچا.
सार्वजनिक और निजी संपत्तियों में आग लगाने और राजनीतिक नारों को व्यवहारिक बनाने और आर्थिक मांगों को पूरा करने के बजाय लेबनान के कुछ क्षेत्र में होने वाली अशांतियों के पीछे अमेरिका की भूमिका को देखा जा सकता है. इराक, लीबिया, सीरिया, लेबनान और दूसरे देशों के आंतरिक संकट सब इसराइल की सुरक्षा को सुनिश्चित बनाने के अमेरिकी लक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में हो रहे हैं. रिपोर्ट पेश करें साथ ही कमर अब्बास.
सार्वजनिक और निजी संपत्तियों में आग लगाने और राजनीतिक नारों को व्यवहारिक बनाने और आर्थिक मांगों को पूरा करने के बजाय लेबनान के कुछ क्षेत्रों में होने वाली अशांति के पीछे अमेरिका की भूमिका को देखा जा सकता है.
فتن داخلی ان کان فی العراق او فی سوریا او فی لیبیا او فی اليمن او فی لبنان.
عراق, لیبیا, سیریا, لبنان اور دوسرے دیشوں کے آنترک سنکٹ سب اسرائیل کی سرکشا کو سنشچت بنانے کے امریکی لکش کے پریپریکش میں ہو رہے ہیں. لبنان میں سنکٹ کے لیے امریکہ کے غیر قانونی پرتیبندھ, آرتھک دباؤ, راشٹریہ مدرا کا اومولین اور وہ بھرشٹاچاری ذمہ دار ہیں جنہیں امریکہ کا سمرتھن پراپت ہے. لبنان کے کچھ سنچار مادھیموں کا ماننا ہے کہ بری آرتھک استھتی کے ویرودھ میں ترابلس اور اکار نگروں میں جو لوگ اکٹھا ہوئے ہیں اور کورونا کے کارن کوارنٹائن کے بعد یہ سنکٹ جو وشم روپ دھارن کر گیا ہے وہ ایک سنیوجت کارکرم ہے.
اصل لبنان مرتبط ب90% من المكونات السياسيه بالخارج.
لبنان میں 90% راجنیتی ودیشوں سے پربھاوت ہو رہی ہے. لبنان میں ہونے والی اشانتی و اپدرو پرتیرودھ کے مورچے کو ختم کرنے ہیتو سعد حریری کے پریاس 2/3 سانسدوں کا دھیان آکرشت کرانے اور امریکہ اور سعودی عرب کی اور رجحان رکھنے والے منتریوں کے ناموں کو سویکار کرنے کے لیے مشل آن پر دباؤ اگلی سرکار کے پریاس ہو سکتے ہیں. لبنان کے سرکشا سوتروں نے بتایا کہ دیش میں ہونے والی جھڑپوں میں 55 سرکشا کرمی گھائل ہو گئے ہیں اور سرکاری اور نجی عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے. اپدروں کا کوئی فائدہ نہیں ہے, لوگوں کے نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ہے. میرا ماننا ہے کہ امریکہ $40 کروڑ کا بھرشٹاچار کرنے والے سینٹرل بینک کے پرمکھ کا جو سمرتھن کر رہا ہے ان اپدروں کے پیچھے اسی کا ہاتھ ہے. لبنان کے پردھان منتری حسان دیاب کو استعفا دیے ہوئے 6 مہینے اور سعد حریری کو پردھان منتری چنے ہوئے 3 مہینے کا سمے بیت رہا ہے. اسی طرح سعد حریری کو نئی سرکار کے گٹھن کی ذمہ داری سونپی گئی ہے, پر ابھی تک نئی سرکار کا گٹھن نہیں ہو سکا ہے. لبنانی لوگوں کی مانگ بھرشٹ ادھیکاریوں پر مقدمہ چلانا اور آرتھک استھتی کو بہتر بنانا ہے. حسن عظیم زادے IRIB بیروت میں پردھان منتری کاریالے کے سامنے سے.
چھبیس جنوری کی گھٹنا کے بعد جہاں کسانوں کا آندولن کمزور پڑتا دکھائی دے رہا ہے, وہیں اس پر راجنیتی بھی تیز ہو گئی ہے. 37 کسان نیتاؤں پر شرطیں توڑنے کا آروپ ہے, جبکہ کچھ نیتاؤں نے سوئم کو کسان آندولن سے الگ کرنے کی گھوشنا کی ہے.
دلی میں 26 جنوری کی گھٹنا کے بعد جب کسانوں کا ٹریکٹر مارچ بے قابو ہو گیا تھا اور کئی استھانوں پر ہنسا ہوئی تھی, ایک اور جہاں کسانوں کا آندولن دھیما پڑ رہا ہے, وہیں دوسری اور اسے لے کر راجنیتی بھی تیز ہو گئی ہے. سنگھو ٹکری اور غازی پور بارڈر پر یدپی کسانوں کا آندولن جاری ہے, لیکن کسانوں کی سنکھیا میں کمی آئی ہے. راشٹریہ مزدور کسان سنگھن اور بھارتی کسان یونین بھانو نے خود کو آندولن سے الگ کرنے کی گھوشنا کی ہے. یہ دونوں سنگھن کرشی قانونوں کے خلاف کسانوں کے آندولن میں شامل تھے. 37 کسان نیتاؤں پر شرطیں توڑنے کا معاملہ درج کیا گیا ہے. گیات رہے کہ ٹریکٹر ریلی کے دوران لال قلعے اور دلی کے دوسرے شیتروں میں جم کر ہنگامہ ہوا تھا اور پولیس اور آندولن کاری کسانوں کے بیچ جھڑپ ہوئی تھی. کسانوں کا ایک سموہ نردھارت مارگ سے بھٹک کر لال قلعے تک پہنچ گیا اور اس نے اس ایتہاسک اسمارک پر اپنے جھنڈے پھیلا دیے. دلی پولیس اس کا آروپ کسانوں پر لگا رہی ہے, پرنتو کسانوں کا دعویٰ ہے کہ ایسا سنیوجت شڈیانتر کے تحت کیا گیا اور لال قلعے پر جھنڈا پھیلانے والا ویکتی کسان نہیں بلکہ بھاجپا کارکرتا ہے. کسانوں کی ٹریکٹر ریلی کے دوران ہوئی ہنسا پر پولیس کاروائی کے بعد راجنیتی بھی شروع ہو گئی ہے. مکھیہ وپکشی دل کانگریس نے دلی ہنسا کے لیے گرہ منتری امیت شاہ کو ذمہ دار بتایا اور کہا کہ انہیں تتکال برخاست کیا جانا چاہیے. کانگریس کے مہا سچیو رندیپ سرجوالا نے کہا کہ کسان آندولن کو بدنام کرنے کے لیے ہنسا کی سازش رچی گئی. انہوں نے کہا کہ اپدرویوں کی اگوائی کر رہے لوگوں کو چھوڑ کر کسان نیتاؤں پر مقدمے کیے گئے ہیں.
دیش کی راجدھانی دلی میں کسان آندولن کی آڑ میں ہوئی سنیوجت ہنسا و اراجکتا کے لیے سیدھے سیدھے گرہ منتری شری امیت شاہ ذمہ وار ہیں. اس سمبندھ میں تمام خفیہ انپٹ کے باوجود ہنسا کے تانڈو کو نہ روک پانے میں ناکامی کے چلتے انہیں ایک پل بھی اپنے پد پر بنے رہنے کا ادھیکار نہیں.
کیندر کی ستاداری بھارتی جنتا پارٹی نے بھی اس کا آروپ کانگریس اور وام دلوں پر لگایا اور دلی پولیس کی پیٹھ تھپ تھپائی. کیندریہ منتری پرکاش جاوڑیکر نے کہا کہ جو لوگ چناؤ ہار گئے تھے وہ مل کر دیش کا ماحول بگاڑنے کا پریاس کر رہے ہیں. انہوں نے آروپ لگایا کہ کانگریسی نیتا راہل گاندھی نے نہ کیول کسانوں کے آندولن کا سمرتھن کیا بلکہ انہیں ہنسا کے لیے اکسایا بھی.
جس طرح سے لال قلعے پر ترنگے کا اپمان ہوا وہ اپمان ہندوستان سہن نہیں.
دلی پولیس نے کسان نیتاؤں پر وعدہ توڑنے اور بھڑکاؤ بھاشن دینے کا آروپ لگایا ہے اور کہا کہ ہنسا کرنے والوں کو بخشا نہیں جائے گا. شمشاد کاظمی, ریڈیو تہران, دلی.
یہ تہران ہے اسلامی گنتنتر ایران کی آواز. شروع ہماری سبھا کا انتیم کاریکرم ہوگا ٹکاؤ آرتھک وکاس, پر اس سے پہلے آپ سنیے دوسرا ساپتاہک کاریکرم آج کی بات.
آج کی بات. दोस्तों, कार्यक्रम आज की बात के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं। हसन अब्बास का सलाम स्वीकार करें। आज हम भारत के गणतंत्र दिवस पर चर्चा करेंगे। भारत वासियों ने अभी 26 जनवरी मनाई है, जो इस देश का गणतंत्र दिवस है। इस दिन औपचारिक रूप से भारतीय लोगों ने अपनी इच्छा के अनुसार अपने देश को चलाने के लिए संविधान को औपचारिक रूप से लागू किया। 26 जनवरी सन 1950 को उस समय के भारत के हाई कमिश्नर कृष्ण मेनन ने भारत के स्वाधीन राजनीतिक प्रजातंत्र होने की घोषणा की।
इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक।
26 जनवरी सन 1930 को इंडियन कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण स्वराज घोषणा पत्र पारित किया, जिसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, जिसका आरंभ डांडी मार्च से हुआ, जो गांधी अरविंद पैक्ट नामक समझौते पर खत्म हुआ। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट आया, जिसने भारत में फेडरल और राजकीय व्यवस्था का आरंभ किया और राज्य के स्तर पर पहली बार वोट का अधिकार मिला। लेकिन इससे भारतीय नेता और नागरिक खुश नहीं थे, इसीलिए अपने संविधान की मांग बनी रही। अंततः ब्रिटिश सरकार ने इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 पास कर दिया, जो हकीकत में भारत की आजादी का परवाना भी था और उसके दो टुकड़े करने का आदेश भी। 14 अगस्त सन 1947 को संविधान सभा के प्रस्ताव का आभार प्रकट करते हुए भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था,
और हमारी एक ही इच्छा और अभिलाषा है, वो अभिलाषा ये है कि हम संसार में सुख और शांति कायम करने में मदद पहुंचा सकें और संसार के हाथों में सत्य और अहिंसा वो अचूक हथियार दे सकें जिसने हमें आज आजादी तक पहुंचाया है। हमारी जिंदगी और संस्कृति में कुछ ऐसा है जिसने हमें समय के थपेड़ों के बावजूद जिंदा रहने की शक्ति दी है। अगर हम अपने आदर्शों को सामने रखे रहेंगे तो हम संसार की बड़ी सेवा कर पाएंगे। आज से हम कानूनी तरीके से अपने भाग्य के विधाता बने और इस देश को शांत, सुखी और समुन्नत बनाने का सारा भार हमारे ऊपर आ गया। जो स्वराज हमने हासिल किया है वो खोखला रह जाएगा अगर हमने देश में रहने वाले सभी वर्ग, जाति और धर्म वाले लोगों में ये विश्वास पैदा नहीं किया कि वो यहाँ सुरक्षित हैं, उनकी उन्नति और तरक्की के रास्ते में कोई बाधा नहीं डाल सकता, उनके धर्म और धर्माचार की पूरी आजादी है, उनकी भाषा और संस्कृति और कल्चर पर कोई आघात नहीं पहुंच सकता।
उनतीस अगस्त सन 1947 को एक 7 सदस्यीय समिति बनी, जिसकी जिम्मेदारी थी भारत का संविधान बनाना। इसमें मुख्य भूमिका भीमराव अंबेडकर ने अदा की। संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने और 17 दिन में संविधान तैयार किया। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर सन 1949 को संविधान पारित किया तथा 26 जनवरी सन 1950 से ये प्रभावी हुआ। 26 नवंबर को भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है। रोचक तथ्य यह है कि पूरे संविधान को न टाइप किया गया न प्रिंट, बल्कि इसे लिखा गया। 26 जनवरी को प्रभावी करने की वजह भी रोचक है। 26 जनवरी सन 1930 को इंडियन कांग्रेस पार्टी ने पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की थी। 24 जनवरी सन 1950 को एक बैठक में सभी सदस्यों ने नए संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन मौलाना हसरत मोहानी ने संविधान के ड्राफ्ट पर यह नोट लिखा, यह संविधान ब्रिटिश संविधान को ही लागू करना और विस्तृत करना है, जिससे आजाद हिंदुस्तानियों और आजाद हिंद का मकसद पूरा नहीं होता। भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर ने भी भारत के भविष्य को लेकर बहुत कुछ कहा और भविष्य में संविधान को सही तरीके से लागू किए जाने के संबंध में कुछ आशंकाएं भी व्यक्त की थीं। उन्होंने संविधान सभा में अपने अंतिम भाषण में कहा था,
सो फार एज द अल्टीमेट गोल इज कंसर्न्ड आई थिंक नन ऑफ अस need have any apprehensions, none of us need have any doubt, but my fear, which I must express clearly, is this: our difficulty, as I said, is not about the ultimate future. Our difficulty is how to make the heterogeneous mass that we have today take a decision in common and march in a cooperative way on that road which is bound to lead us to unity. Our difficulty is not with regard to the ultimate. Our difficulty is with regard to the beginning.
डॉक्टर अंबेडकर की मुख्य चिंताओं में से एक ये थी कि भविष्य में कहीं देश की स्वतंत्रता को किसी महानायक के चरणों में समर्पित न कर दिया जाए, दूसरे शब्दों में कहीं देश लोकतंत्र से तानाशाही में न बदल जाए। उनकी ये चिंताएं आगे चलकर सही भी सिद्ध हुईं। भारत के योजना आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर नरेंद्र जाधव इस बारे में कहते हैं,
ये उनकी बात जो है वो बाद में हमने देखा है भारतीय इतिहास, स्वतंत्र भारत के इतिहास में, कि पुनः पुनः साबित हो चुकी है। जैसे कि 1975 में जो इमरजेंसी हमारे देश में आ गई थी, वहाँ अगर आपको याद होगा तब कहा गया था इंदिरा इज इंडिया। जब व्यक्ति को, किसी व्यक्ति की पूजा इतनी बढ़ जाती है कि उसको देश के भी ऊपर उठाया जाता है, तब उस देश में लोकतंत्र का ह्रास होता है और तानाशाही की ओर वो देश चल पड़ता है। ये चेतावनी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो दी थी उसी ऐतिहासिक भाषण में, इसको हमको सदैव मद्देनजर रखना होगा।
डॉक्टर अम्बेडकर ने इसी तरह कहा था कि अगर भारत के राजनीतिक दल अपने विचारों व नजरियों को देश से ऊपर रखेंगे तो हमारी आज़ादी एक बार फिर खतरे में पड़ जाएगी, बल्कि शायद हमेशा के लिए खो जाएगी। नरेंद्र जाधव कहते हैं कि विविधता में एकता देश का बुनियादी सिद्धांत है जिसकी हर हाल में रक्षा की जानी चाहिए।
ये विविधता में हमारी एकता को बनाए रखना, यह हमारे देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर कोई पंथ, कोई धर्म अपने आप को देश के ऊपर उठाना चाहेगा तो उस देश का, हमारे देश का पतन होने में कोई देर नहीं लगेगा, ये उनकी चेतावनी थी।
बहरहाल सन 1857 के विद्रोह से सन 1947 तक अर्थात 90 वर्षों तक तेजी और व्यापकता के साथ चले संघर्ष के बाद यह अधिकार भारतवासियों को मिला है। यूं तो अंग्रेजों का पहला जहाज जहांगीर के दौर में सन 1601 में भारत पहुंच चुका था, जिसके बाद 346 साल गुजर गए तब जाकर अंग्रेजों को बाहर निकाला जा सका। लेकिन उसके बाद भारत के संचालन की समस्या थी जिसके लिए संविधान बनाया गया और उसमें भारत की संस्कृति और विभिन्न धर्मों के लोगों का ख्याल रखा गया। रोचक बात यह है कि भारत में सेक्युलर व्यवस्था लागू करने में मुसलमानों का काफी हाथ रहा और संविधान सभा में जमीयत उलमा के महासचिव मौलाना हफीजुर रहमान सेव हारवी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर सन 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। सन 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें संशोधन किया गया था, जिसमें तीन नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। आज जो हालात हैं उनमें एक वर्ग धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को गाली की तरह एक विशेष वर्ग पर चिपकाने की कोशिश करता है। राजनाथ सिंह ने तो संसद में ये तक कह दिया कि भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं बल्कि पंथ निरपेक्ष देश है।
सेकुलर शब्द का जो औपचारिक अनुवाद है वह है पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष नहीं। भारत का धर्म ही स्वयं में पंथ निरपेक्ष है, स्वयं में ही भारत का धर्म अपने में स्वयं। इस हकीकत को भी वह समझते थे, इसीलिए उन्होंने सेकुलर शब्द का प्रयोग भारत के प्रीएम्बल में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने नहीं किया था।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं कि आजकल जिसे सेक्युलरिज्म कहा जाता है उसकी देश को जरूरत नहीं है।
हमें पंथ और धर्म में अंतर महसूस करना होगा। सेक्युलरिज्म का मतलब पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष नहीं, और इसलिए इस शब्द पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। दूसरा, देश के अंदर सेकुलरिज्म का मतलब क्या है? अगर पंथ निरपेक्ष ही सेकुलरिज्म है तो हिंदू से बड़ा सेकुलर कोई नहीं। जो सर्वे भवन्तु सुखिना की बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, एकम सद विपरा बहुधा वदन्ति की बात करता है, लेकिन इस देश के अंदर जो सो कॉल्ड सेकुलरिस्ट हैं, इन्होंने सेकुलरिज्म का मतलब क्या बना दिया? भारतीयता का जो विरोध करे, देश की सनातन परंपरा का जो विरोध करे, भारत के महापुरुषों को जो गाली दे, वो उतना बड़ा सेकुलर होगा? इस प्रकार के सेकुलरिज्म की आवश्यकता इस देश में नहीं।
इस प्रकार के विचारों पर चिंता प्रकट करते हुए मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की प्रमुख सोनिया गांधी ने संसद में कहा,
जिन आदर्शों और सिद्धांतों ने हमें दशकों से प्रेरित किया है, आज उन पर खतरा मंडरा रहा है। उन पर जानबूझकर हमला हो रहा है।
भारत की आजादी और उसके संघर्ष की कहानी बहुत लंबी और खून में डूबी हुई है। इस आजादी को पाने के लिए भारत के सभी वर्ग और धर्म के लोगों ने खून बहाया है। अगर न्याय के साथ भारत की आजादी का पूरा इतिहास पढ़ा जाए तो उसमें वो लोग आगे आगे नजर आएंगे जिन्हें आज अपने ही देश में देशभक्ति के सर्टिफिकेट देने की जिम्मेदारी दी जा रही है, जिनकी विचारधारा वाले लोगों का खून क्या आजादी के लिए पसीना भी नहीं बहा है। भारत को 15 अगस्त सन 1947 में आज़ादी मिली। 26 जनवरी सन 1950 को भारत गणराज्य बना और देश में संविधान लागू कर दिया गया। पहली बार गणतंत्र दिवस जिस तरीके से मनाया गया था उसमें अब बहुत कुछ बदल गया है, जो स्वाभाविक भी है, लेकिन इसके साथ ही भारत में और भी बहुत कुछ बदल गया है जो न केवल ये कि स्वाभाविक नहीं है बल्कि चिंताजनक भी है। पूरी दुनिया में अपनी गंगा जमुनी संस्कृति, अपनी सहिष्णुता और उदार देशवासियों के लिए मशहूर भारत का नाम अब उन देशों में दर्ज किया जाने लगा है जहां अल्पसंख्यकों को पूरी आज़ादी नहीं है। भारत के लिए सबका खून बहा है बिना किसी भेदभाव के। अंग्रेजों ने स्वतंत्रता संग्रामियों को फांसी पर चढ़ाते समय उनके धर्म व जाति पर ध्यान नहीं दिया, तो आज संपन्न व समृद्ध भारत में भारतीयता और राष्ट्रवाद के दावे के साथ कुछ वर्गों को हाशिए पर रखने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्या ये वही भारत है जिसका सपना अपना खून बहाकर उसे आजाद कराने वालों ने देखा था? दोस्तों, इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। हमें अनुमति दीजिए। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। रेडियो तेहरान सच्चाई और उन सब की आवाज जिनकी आवाज कोई नहीं सुनाता। ताजा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए। और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम। टिकाऊ आर्थिक विकास।
दोस्तों, कार्यक्रम टिकाऊ आर्थिक विकास की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहरदादी और मोहम्मद मेदी का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, टिकाऊ अर्थव्यवस्था के आज के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि दुनिया के उद्योगों में से एक सबसे नवीन उद्योग उन्नत उद्योग के बारे में। इस उद्योग में विज्ञान, तकनीक और अनुसंधान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो किसी भी देश के विकास और विस्तार में अहम रोल अदा करता है। आशा है हमारा ये प्रयास भी आपको पसंद आएगा।
ईरान का आर्थिक विकास और विस्तार उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों की गतिशीलता और वृद्धि का परिणाम है। उन्नत उद्योग औद्योगिक क्षेत्र की सहायक कंपनियों में से एक है, जिसका परिष्कृत तकनीकों, तकनीकी ज्ञान, नवाचार, रचनात्मकता, अनुसंधान और विकास के साथ साथ विशिष्ट मानव संसाधनों का उपयोग करके देश की समृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। कीमतों का जल्दी जल्दी बदलना और किसी भी वस्तु का उच्च मूल्य इस उद्योग विशेषताओं में से एक है। हम अपने आज के कार्यक्रम में आपको ईरान के उन्नत उद्योग के बारे में विस्तार से बताएंगे।
उन्नत उद्योग के कई भाग होते हैं। इसके हर भाग में भी कई अलग अलग क्षेत्र होते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी से लेकर बायो टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी, संपर्क चिकित्सा एवं शोध उपकरण, उन्नत दवाएं, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, नई ऊर्जा, संज्ञानात्मक विज्ञान के क्षेत्र सहित और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इस उद्योग का अहम हिस्सा हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि उन्नत उद्योग में किसी भी वस्तु के उत्पादन में अनुभव से कहीं ज्यादा ज्ञान की भूमिका होती है। उन्नत उद्योगों में अंतिम उत्पाद के उत्पादन में प्रौद्योगिकी बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ यह है कि इस उद्योग में टेक्नोलॉजी का किसी भी वस्तु को बनाने में कच्चे माल से अधिक महत्व होता है, क्योंकि इस उद्योग में परिवर्तन की गति भी बहुत अधिक होती है। अगर पारंपरिक टेक्नोलॉजी की आयु 10 वर्षों से अधिक की है, तो उन्नत उद्योगों में ये भी संभव है कि उसकी आयु 1 वर्ष की ही हो। इसके अलावा ये भी संभव है कि पारंपरिक उद्योगों में मानव संसाधनों के मूल्यों को अनदेखा किया जाए, लेकिन उन्नत उद्योग में मानव संसाधन बहुत अहम है, क्योंकि किसी भी उत्पाद के अंतिम उत्पादन में उसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
नैनो तकनीक उन्नत उद्योग का एक अहम भाग है। इसका प्रभाव स्वास्थ्य निर्माण, तेल, पेट्रोकेमिकल, ऑटोमोबाइल, कपड़ा, खेल उत्पाद, कृषि, जल, पर्यावरण और घरेलू उपकरणों जैसे उद्योगों तक फैला हुआ है। नैनो टेक्नोलॉजी एक शक्तिशाली तकनीक है जो कीमतों को कम करने के अलावा वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ा सकती है। ईरान में नैनो तकनीक के क्षेत्र में अब तक 600 से अधिक उत्पादों और उपकरणों का उत्पादन किया गया है, जो इस क्षेत्र में सक्रिय 220 निर्माण कंपनियों के प्रयासों का परिणाम है। ईरान में नैनो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट मुख्यालय इस क्षेत्र में लगभग 2 दशकों से काम कर रहा है। ये मुख्यालय विज्ञान की मदद से इस क्षेत्र में अनुसंधान और विस्तार के काम को जारी रखे हुए है। ईरान में नैनो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट मुख्यालय ने अपने दूसरे चरण में नैनो तकनीक से तैयार किए गए उत्पादों का व्यवसायीकरण करना शुरू कर दिया है और साथ ही दूसरे देशों में निर्यात के रास्ते तलाश रहा है।
आंकड़े ये बताते हैं कि ईरान से दूसरे देशों में नैनो उत्पादन के निर्यात की प्रक्रिया का विस्तार इस बात से साबित होता है कि चीन, जो दुनिया में सबसे बड़ा निर्यातक देश माना जाता है, ईरानी नैनो उत्पादों का आयात करता है। वर्ष 2017 में 88% से अधिक ईरानी नैनो टेक्नोलॉजी के उत्पाद एशिया के अलग अलग देशों और 10 से अधिक यूरोपीय देशों में भेजे गए हैं। ईरान नैनो टेक्नोलॉजी के उत्पाद आयात करने वाले देशों में जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, चीन और दक्षिण कोरिया का नाम लिया जा सकता है। इस तरह पड़ोसी देश इराक और तुर्की भी उन देशों में शामिल हैं जहां ईरानी नैनो टेक्नोलॉजी के उत्पाद भेजे जाते हैं।
उन्नत उद्योगों के क्षेत्र में ईरान की नॉलेज बेस्ड कंपनियों की उपलब्धियों में से एक एरोस्पेस उद्योग से संबंधित उत्पाद शामिल हैं। इस उद्योग की विशेषताओं में से एक नई और विभिन्न तकनीकों का व्यापक उपयोग है। तेजी से और सुरक्षित परिवहन करना विमानन उद्योग की उपलब्धियों में से एक है। प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी, प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राहत, कृषि उत्पादों की देखभाल कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस तथ्य के बावजूद विमानन उद्योग की ओर ध्यान आकर्षित करती हैं कि ये एक पूंजी उद्योग है। एरोस्पेस उद्योग की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ये उद्योग अनुसंधान, विज्ञान और इंजीनियरिंग सहित अन्य क्षेत्रों में लगातार आगे बढ़ रहा है और साथ ही साथ अन्य डाउनस्ट्रीम उद्योगों में भी महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है।
हाल के वर्षों में ईरान के एरोस्पेस उद्योग की महत्वपूर्ण उपलब्धियां इस प्रकार हैं कि एशिया प्रशांत अंतरिक्ष सहयोग संगठन के महासचिव इस्लामी गणतंत्र ईरान को इस संगठन का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य मानते हैं। ली शिजुन इस संबंध में कहते हैं कि एरोस्पेस के क्षेत्र में ईरान की प्रगति सराहनीय है। स्वदेशी टर्बोरेज इंजन और औज का डिजाइन और उत्पादन ईरान के एरोस्पेस उद्योग की हालिया उपलब्धियों में से एक है, जिसकी डिजाइन और उत्पादन में देश भर की 30 नॉलेज बेस्ड कंपनियां और 10 विश्वविद्यालय संयुक्त तौर पर शामिल थे। इस्लामी गणतंत्र ईरान उन 8 देशों में से एक है जिनके पास इन इंजनों के निर्माण के लिए डिजाइन की टेक्नोलॉजी मौजूद है। टर्बो जेट इंजन का उपयोग क्रूज मिसाइलों, प्रशिक्षण जेट और युद्धक विमानों में किया जाता है।
ये बात ध्यान योग्य है कि विमान के सबसे जटिल हिस्सों में से एक उसका इंजन होता है। इंजन के निर्माण में बहुत उन्नत एरोस्पेस ज्ञान और एरोस्पेस उद्योग में विशेषज्ञों की क्षमताओं के उपयोग की आवश्यकता होती है। आमतौर पर एरोस्पेस विज्ञान में अग्रणी देश विमान के इंजन के किसी एक भाग को बनाने के विशेषज्ञ होते हैं। दूसरे शब्दों में इसे यूं कहा जा सकता है कि विमान के इंजन के विभिन्न भागों का प्रत्येक भाग विशिष्ट देशों में निर्मित होता है और ज्यादातर इसका इंजन कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां मिलकर एक संपूर्ण इंजन को तैयार करती हैं। ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट यासीन और देशी फाइटर विमान कौसर दोनों को ईरान की नॉलेज बेस्ड कंपनियों ने बनाया है।
ये ईरानी विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों के शून्य से 100% तक पहुंचने की यात्रा को दर्शाता है। ईरान का एरोस्पेस उद्योग की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि अत्याधुनिक ड्रोन का निर्माण है। इस समय पूरी दुनिया में लगभग सभी क्षेत्रों में ड्रोन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। इस्लामी गणतंत्र ईरान उन देशों में शामिल है जिसके पास ड्रोन विमानों की नवीनतम तकनीक मौजूद है। वास्तव में इस समय ईरान दुनिया में ड्रोन के उत्पाद में अग्रिम पंक्ति में है। हालांकि दुनिया में ड्रोन निर्माण का इतिहास एक सदी से अधिक हो गया है, इस क्षेत्र में सीमित संख्या में अविकसित देश ही काम कर रहे हैं, लेकिन इस्लामी गणतंत्र ईरान 3 दशकों से भी कम समय में ड्रोन की डिजाइन, निर्माण और उसके उत्पादन में खुद को वैश्विक शक्ति के रूप में दुनिया के सामने पेश करने में सफल रहा है। इस समय इस्लामी गणतंत्र ईरान ड्रोन के उत्पादन और निर्माण के क्षेत्र में पश्चिम एशियाई देशों में पहले नंबर पर है, जबकि दुनिया के शीर्ष 5 देशों में से एक है। ये ऐसी स्थिति में है कि अधिकतर रक्षा और सैन्य उत्पाद शून्य से लेकर उसके उत्पादन तक केवल ईरानी ही हैं। इन ड्रोनों का निर्माण और उत्पादन पूरी तरह स्वदेशी है, जो अपने लक्ष्य को लंबी दूरी पर मार कर सकते हैं और सुरक्षित रूप से अपने ठिकानों पर लौट सकते हैं।
एक अन्य उन्नत उद्योग जो रणनीतिक वस्तुओं के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो है दवा उद्योग। हालांकि इस्लामिक क्रांति की सफलता से पहले ईरान को एक दवा आयातक देश माना जाता था, लेकिन इस्लामिक क्रांति की सफलता के बाद दूसरे उद्योगों की तरह दवा उद्योग में भी भारी परिवर्तन आया और विभिन्न तरह की दवाओं का उत्पादन देश में ही होने लगा। आंकड़ों के अनुसार देश की आवश्यकताओं की 97% दवाओं का उत्पादन अब ईरान में ही होता है। ईरान में लगभग 20 कॉलेज और सैकड़ों दवाई की कंपनियां हैं जो निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के तत्वावधान में काम करती हैं। ईरान के दवा उद्योग का वित्तीय कारोबार $4 बिलियन से अधिक का है। ईरानी दवा उद्योग की मानव संसाधन क्षमता इस उद्योग की ताकत के महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक है। देश के दवा उद्योग में ईरानी अभिजात वर्ग की प्रगति और सफलता ने क्षेत्र में नंबर एक दवा निर्माता बना दिया है, जो पूर्व सुनियोजित दवाओं के उत्पादन में दुनिया में 7वीं सबसे बड़ी है और दवा उद्योग में शीर्ष 10 देशों में से एक है। ये उपलब्धियां ऐसी स्थिति में हैं कि ईरान के दूसरे उद्योगों की तरह इस उद्योग पर भी पश्चिमी देशों, विशेषकर अमेरिका की ओर से गैर कानूनी तरीके से कड़े प्रतिबंध लगे हुए हैं।
कार्यक्रम के अंत में ये जरूरी समझते हैं कि उस बिंदु की ओर संकेत करें कि जिसमें ये बता सकें कि उन्नत उद्योग उच्च टेक्नोलॉजी पर आधारित है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आई क्रांति ने विश्व भर के देशों के उद्योग जगत में नए नए परिवर्तन पैदा कर दिए हैं। इसने सभी देशों को ये संभावनाएं उपलब्ध कराई हैं कि वो इन टेक्नोलॉजी की सहायता से अपने देश के विकास और विस्तार में प्रगति लाएं। वास्तव में ये नई टेक्नोलॉजी उन देशों के लिए प्रगति प्राप्त करने का एक बेहतरीन अवसर है जो उद्योग के क्षेत्र में पीछे रह गए हैं।
दोस्तों, हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओं, चलते चलते मुख्य समाचारों का सारांश एक बार फिर सुन लें। राष्ट्रपति डॉ हसन रूहानी ने कहा है कि ईरान थोपे गए एक आर्थिक युद्ध का सामना कर रहा है। ईरान ने कहा है कि अगर प्रतिबंध नहीं हटाए गए तो वो पूरक प्रोटोकॉल से निकल जाएगा। ईरान ने कहा है कि अगर इसराइल ने मूर्खता की तो हैफा व तेल अवीव को मिट्टी के ढेर में बदल देंगे। तो श्रोताओं, इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम टिकाऊ आर्थिक विकास। तो श्रोताओ, इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा चाहते हैं। खुदा हाफिज, शुभ रात्रि। Thank you.